दानियल की पुस्तक संख्या 163।
भविष्यवाणी का अनावरण। दानियल के 11वें अध्याय का अन्वेषण।
अब हम दानियल के 11वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे।
और मैं मादीदार जावेश के प्रथम वर्ष में, हाँ मैं ही उसे स्थिर करने और उसे बल देने के लिए खड़ा रहा। और अब मैं तुझे सत्य बताऊंगा, देख फारस में अभी 3 राजा और उठेंगे और चौथा उन सब से कहीं अधिक धनी होगा और अपनी धन संपत्ति से प्राप्त सामर्थ्य के द्वारा वो सबको यूनान के राज्य के विरुद्ध उकसाएगा। और एक पराक्रमी राजा उठेगा जो बड़े अधिकार के साथ राज्य करेगा और अपनी इच्छा के अनुसार करेगा, परंतु जब वो उठेगा तो उसका राज्य टूट जाएगा और स्वर्ग की 4 दिशाओं में बांट दिया जाएगा और वो उसके वंशजों के लिए न रहेगा और न उतने अधिकार के अनुसार होगा जिसके साथ उसने राज्य किया था, क्योंकि उसका राज्य उखाड़ लिया जाएगा और उनसे भिन्न अन्य लोगों को दे दिया जाएगा। दानियल एकैद्रायिक 4।
गैब्रियल शुरुआत में दानियल को ये बताता है कि वो दारियावेश के पहले वर्ष में भी उसके साथ कार्य कर चुका था, जो वो वर्ष था जब दारियावेश के भतीजे उसके सेनापति ने बाबुल पर अधिकार कर लिया और बेलशस्सर को मार डाला। 10वें अध्याय की पहली आयत के अनुसार दानियल ये दर्शन कुरूश के 3रे वर्ष में प्राप्त कर रहा है, इसलिए गैब्रियल दारियावेश और कुरूश दोनों को अंतकाल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के रूप में चिह्नित कर रहा है। बेलशस्सर और बाबुल 538 ईसा पूर्व में मादी फारसी साम्राज्य द्वारा पराजित किए गए।
कुरूश ने बाबुल की घेराबंदी की जिसे उसने 538 ईसा पूर्व में युक्ति द्वारा जीत लिया, और बेलशस्सर की मृत्यु के साथ जिसे फारसियों ने मार डाला, बाबुल का राज्य अस्तित्व में रहना बंद हो गया। उरिया स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन, शिथियाल्स।
ईसा पूर्व 538वें वर्ष में दानियल ने 9वां अध्याय नपीबद्ध किया।
पूर्ववर्ती अध्याय अध्याय 8 में अभिलिखित दर्शन बन बेलशस्सर के 3रे वर्ष ईसा पूर्व 538 में दिया गया था, उसी वर्ष जो दारियावेश के प्रथम वर्ष भी था। इस अध्याय अध्याय 9 में वर्णित घटनाएं घटी। उरिया स्मिथ, डैनियल एंड द रिवेलेशन 205।
538 ईसा पूर्व में दारियस के पहले वर्ष में, जो बेलशस्सर का 3रा और अंतिम वर्ष था, प्रभु ने कल्दियों की भूमि को दंडित किया और उसे उजाड़ किया,
और ये सारा देश उजाड़ और विस्मय का कारण हो जाएगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा की सेवा करेंगी, और जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति को उनके अधर्म के कारण दंड दूंगा। ये प्रभु की वाणी है, और कसदियों के देश को सदा का उजाड़ बना दूंगा। यिर्मयाह 25 भाग नंबर 12।
10वें पद में प्रभु के बाद शब्द का प्रयोग करते हैं जब वे बाबुल के दंड की ओर ले चलते हैं। बाबुल के उजाड़ किए जाने के बाद प्रभु परमेश्वर की प्रजा के लिए अपना उत्तम कार्य पूरा करेंगे।
क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जब बाबुल में 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हारे विषय में अपने भले वचन को पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर लौटा दूंगा। यिर्मयाह 25:10।
70 वर्षों की बंधुआई 1700 ईसा पूर्व में शुरू हुई।
सचिदा वर्षों का प्रारंभ ईसा पूर्व 606 में हुआ। दानियल ने समझ लिया कि अब वे अपनी समाप्ति के निकट पहुंच रहे थे। यूराइरा स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन 205।
70 वर्षीय बंधुआई 670 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 536 ईसा पूर्व में समाप्त हुई, जो 538 ईसा पूर्व में बेलशस्सर की मृत्यु और बाबुल के उजड़ने के 2 वर्ष बाद था। वो कुरूश का 3रा वर्ष था। गब्रेल हिद्देकेल नदी की भविष्यवाणी को कुरूश के 3रे वर्ष में स्थापित करता है, और 11वें अध्याय के वृत्तांत का आरंभ दारियावेश के प्रथम वर्ष का उल्लेख करके करता है, और ऐसा करते हुए वो 2 विशिष्ट वर्षों की पहचान कर रहा है, 536 ईसा पूर्व और 536 ईसा पूर्व दोनों ही नियत समय थे। 536 ईसा पूर्व वो नियत समय था जब 70 वर्षों की भविष्यवाणी का समापन होना था, और 536 ईसा पूर्व वो नियत भविष्य सूचक समय था जब 336 ईसा पूर्व के बाद प्रभु अपनी प्रजा के लिए अपना शुभ कार्य पूरा करेगा। 538 ईसा पूर्व और 536 ईसा पूर्व दोनों नियत समय हैं, और इन्हीं दो ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। पहला मादी का प्रथम राजा और दूसरा फारस का प्रथम राजा। शाब्दिक बाबुल में शाब्दिक इसराइल की साधा के कैद के 70 वर्षों का अंत 5 सिंगहुल ईस्वी से 78 आठात के अथियोपरम्बरा इसराइल के बंदी रहने के 1260 वर्षों का अंत था। 78 1965 में एक नियत समय था और तब वो काल आरंभ हुआ जिसे भविष्यवाणी में अंत का समय कहा जाता है। 5 सिंगहु तरात के थे कि सिंगहु जिन्हें नियत समय के लिए बहाया गया है अंत का समय कहलाने वाले काल के आरंभ को भी चिन्हित करते हैं।
इस निरंतर उत्पीड़न की मूल लंबाई के दौरान पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया उतनी ही वास्तविक रूप से बंदी अवस्था में थी जितने की निर्वासन की अवधि में इसराइल की संतानें बाबुल में बंधुआई में रखी गई थीं। प्रॉफिट्स इन किंग्स 776।
समस्त भविष्यवाणी उन दिनों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट रूप से अंतिम दिनों को संबोधित करती है जिन दिनों में वे पहली बार पूरी हुई थीं। अतः 538 ईसा पूर्व और राजा दारयवेश तथा 536 ईसा पूर्व और राजा कुसरू ऐसे -9 में अंत के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये दोनों राजा राष्ट्रपति रीगन और प्रथम राष्ट्रपति बुश के प्रकार स्वरूप है। 538 ईसा पूर्व और 536 ईसा पूर्व एक ऐसे मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस समझ के साथ पूरा होता है कि दोनों तिथियां उसी एक मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंत के समय का मार्ग चिन्ह दो प्रतीकों से मिलकर बना होता है और कभी कभी जैसा कि रीगन और प्रथम बुश के साथ हुआ दोनों प्रतीक उसी एक वर्ष में पूरे हो जाते हैं। परंतु ये नियम का अपवाद है क्योंकि मूसा के समय में अंत के समय का मार्ग चिन्ह दोनों के जन्म था जो परोम से पृथक था। मसीह के इतिहास में ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मसीह का जन्म था जो 6 महीनों से पृथक था। अंत का समय के संदर्भ में मसीह विरोधी के इतिहास में ये 1798 और 1799 के वर्ष थे। फ्रांसीसी क्रांति भविष्यवाणी का विषय है और ये 1798 में शुरू हुई और 10 वर्ष तक चली। 1799 में अपने नियत समय पर समाप्त हुई, ठीक वैसे ही जैसे 1798 भी एक नियत समय था। साथ मिलकर वे उस पशु को दिए गए घातक घाव की पहचान करते हैं और उस स्त्री की भी जो उस पशु पर सवार हुई और उस पर शासन किया। दारियस वो राजा था जिसने अपनी सेना को दीवार के रास्ते भीतर भेजकर अपने शत्रु को पराजित किया और वो रीगन का प्रतिनिधित्व करता है जिसने लौह पर्दा की दीवार गिराकर अपने शत्रु को पराजित किया। साइरस पहले बुश का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि साइरस महान साइरस के रूप में जाना जाता है और जॉर्ज बुश प्रथम बड़ा बुश है और अंतिम बुश छोटा बुश है क्योंकि ये दोनों राजा और वे दो तिथियां जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं वास्तव में एक ही प्रतीक है। उनमें से एक बाबुल के शासन करने के 70 वर्षों को चिन्हित करता है। वो 70 वर्षीय काल ईपू 533 में अपने नियत समय पर पहुंचा और उसका प्रतिनिधित्व दारा करता है। 70 वर्षों की बंधुआई की परिपूर्ति ईपू 533 में मना आवीर्द करता है और उसका प्रतिनिधित्व क्रूस करता है। ये दोनों मिलकर अंत का समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब भविष्यवाणी का प्रकाश खोल दिया जाना था। 1798 में प्रकाशित वाक्य 14 का पहला स्वर्गदूत अंत के समय में आ पहुंचा और बहन वाइट कहती हैं कि वो स्वर्गदूत और कोई नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह थे। कुरूश के तीसरे वर्ष में मीकाएल जो परमेश्वर की प्रजा के राजकुमार और स्वर्गदूतों के महादूत हैं कुरूश के साथ कार्य करने और उस प्रकाश की पुष्टि करने के लिए उतर आए जो कुरूश को 3 फरमानों में से पहला घोषित करने के लिए मार्गदर्शन करता था। एक ऐसा फरमान जो परमेश्वर की प्रजा को यरूशलेम लौटने और नगर पवित्र स्थान तथा गलियों और दीवारों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देता था। वो कार्य पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के कार्य का प्रतिरूप था जो 70 शतक में अंत के समय में आरंभ हुआ। दारियस और साइरस के दिनों में अंत के समय मीकाएल का अवतरण 1798 में प्रथम स्वर्गदूत के आगमन का प्रतिनिधित्व करता था और दोनों मिलकर 1999 में अंत का समय पर उसी स्वर्गदूत के आगमन को चिन्हित करते हैं। 1999 ने अंत का समय की अवधि की शुरुआत की और वो एक नियत समय भी था। एक नियत समय भविष्य सूचक समयावेही की समाप्ति को दर्शाता है। 1813-63 का विद्रोह आधुनिक आत्मिक इसराइल के लिए प्रथम कडेश पर 126 वर्षों की उस अवधि की शुरुआत था जो 1999 में नियत समय पर समाप्त हुई। 126 1260 का दशमांश अर्थात दसवां भाग है और 1798 में 1260 वर्षों की समाप्ति पर प्रथम स्वर्गदूत का आंदोलन इतिहास में आया। 126 वर्षों की समाप्ति पर 1999 में तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन इतिहास में आया। दानियल के अध्याय गहल 11 की पहली आयत में गैब्रियल सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से ये बताता है कि प्रस्तुत इतिहास की शुरुआत अंत के समय 1979 में साइरस से होती है। वहां महान साइरस वरिष्ठ बुश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बाद तीन राजा होंगे और फिर एक चौथा राजा होगा जो उन सब से कहीं अधिक धनी होगा। अतः वह चौथा धनी राजा जो समूचे यूनान को उकसाता है 1979 में गिने तो छठा राष्ट्रपति है। अध्याय 10 की घटनाओं में दानियल को शोक करते हुए दिखाया गया है और शोक के अपने अनुभव में दर्शन को देखते हुए वह मसीह की प्रतिमा के अनुरूप रूपांतरित हो जाता है। 21 दिनों का ये शोक काल एक ऐसे मृत्यु काल का प्रतिनिधित्व करता है जो पुनरुत्थान पर आकर समाप्त होता है। अध्याय 10 में मीकाएल स्वर्ग से उतर आया है और यहूदा 7 में जब वह उतरता है तो वह मूसा को पुनर्जीवित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में मूसा और एलिया को घात किया गया है और वे 3.5 सांकेतिक दिनों तक सड़क पर मृत पड़े रहते हैं। तब मूसा एलिया के साथ एक बड़ी आवाज द्वारा पुनर्जीवित किए जाते हैं
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें प्रविष्ट हुआ और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया और उन्होंने स्वर्ग से एक ऊंचा शब्द ये कहते हुए सुना, यहां ऊपर आओ। और वे बादल पर चढ़कर स्वर्ग में चले गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य 11:11-12।
महान आवाज जो पुनर्जीवित करती है वो महादूत की आवाज है और वो महादूत माइकल है।
क्योंकि स्वयं प्रभु आदेश की पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी और परमेश्वर की तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16।
वो इतिहास जिसमें मूसा और एलिया की हत्या की जाती है और उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है 144,000 के मुद्रांकन का इतिहास है। वो इतिहास 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत की पहली आवाज के साथ आरंभ हुआ, जिसके विषय में सिस्टर व्हाइट ये पहचान कराती हैं कि वो उस समय आती है जब न्यूयॉर्क नगर की महान इमारतें गिरा दी गई थीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी आवाज शीघ्र आने वाले रविवार कानून के समय सुनाई देती है, जब परमेश्वर के दूसरे झुंड को बाबुल में से बाहर बुलाया जाता है। वही इतिहास अर्थात मुद्रांकन का इतिहास वो है जिसमें दानियल को माराह दर्शन को निहारने के द्वारा मसीह की प्रतिमा में परिवर्तित होते हुए निरूपित किया गया है, जो मारेह दर्शन का स्त्रीलिंगी रूप है। यही वो कारक दर्शन है जो उस प्रतिमा को जिसे देखा जाता है देखने वालों में पुनरुत्पन्न होने का कारण बनता है।
मोहरबंदी के उस इतिहास और अध्याय 10 में दानियल के रूपांतरण के वर्णन में मीकाएल के उस अवतरण का भी समावेश है जब वो मूसा, एलिया और दानियल के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों को पुनर्जीवित और रूपांतरित करता है। वो प्रधान स्वर्गदूत की बड़ी आवाज के साथ उस पुनरुत्थान को संपन्न करता है और इस प्रकार पहली और अंतिम आवाजों के बीच एक तीसरी आवाज प्रदान करता है। और पहली तथा अंतिम दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की आवाज है। बीच की आवाज वो स्थान है जहां विद्रोह का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि जब मीकाएल ने मूसा को पुनर्जीवित किया तब उसने शैतान से वाद विवाद नहीं किया, यद्यपि विद्रोह का जनक शैतान वहां विरोध करने के लिए उपस्थित था।
तथापि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने, जब वो शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में विवाद कर रहा था, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस न किया, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहूदा 7।
मुहरबंदी के उस समय का आरंभ, जो 11 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होता है, सत्य की हस्ताक्षर छाप से चिह्नित है, क्योंकि उस अवधि के मध्य में जुलाई 2023 में प्रधान दूत के महान स्वर ने मसीह में मरे हुओं को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ किया, जो उसके मध्य स्वर को सुनना चुनते हैं। ध्यान दें कि 2023 2001 के 22 वर्ष बाद आता है और 22 220 का दशमम ही है, जो दिव्यता और मनुष्यता के बीच की कड़ी का प्रतीक है और पुनर्स्थापना का भी एक प्रतीक है। जुलाई 2003 में वो सामर्थी स्वर्ग दूत, जो स्वयं यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं है और जो सत्य है, जो मीकाएल भी है और जो अपने हाथ में एक संदेश लेकर उतरने वाला अल्फा और ओमेगा है, उसके हाथ की छोटी पुस्तक दानियेल का वही भाग है जो अंतिम दिनों तक मुहर बंद रखा गया था।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियेल की पुस्तक का पूरक है, एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना है। जो पुस्तक मुहरबंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं, बल्कि दानियेल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। दूत ने आज्ञा दी, परंतु तू हे दानियेल, इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर अंत के समय तक मुहर बगा दे। दानियेल 12:4। प्रेरितों के काम 5:50।
दानियेल की भविष्यवाणी का जो भाग अंत के दिनों से संबंधित है, वो 11वां अध्याय है। ये 11वें अध्याय के अंतिम 6 पद हैं, पर अधिक सटीक रूप से कहें तो उन अंतिम 6 पदों में उसी अध्याय में वर्णित ऐतिहासिक वृत्तांतों की पुनरावृत्ति की गई है।
हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। संकटपूर्ण समय हमारे सामने है। संसार युद्ध की आत्मा से उद्वेलित है। शीघ्र ही वे संकट के दृश्य, जिनका उल्लेख भविष्यवाणियों में किया गया है, घटित होंगे। दानियेल के 11वें अध्याय की भविष्यवाणी लगभग अपनी पूर्ण परिपूर्ति तक पहुंच चुकी है। इस भविष्यवाणी की परिपूर्ति में जो इतिहास घटित हो चुका है, उसका बहुत सा भाग पुनः दोहराया जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस नंबर 13, 394।
दानियेल के 11वें अध्याय का 16वां पद एक ऐसे इतिहास को दर्शाता है जो 41वें व्याख्यान में पुनः दोहराया जाता है, क्योंकि उस पद में उत्तर का राजा मनोरम देश में खड़ा होता है। 16वें पद का इतिहास ये बताता है कि कब रोमी सेनापति पोम्पेया ने यहूदा और यरूशलेम को बंदीगिरी में ले गया।
परंतु जो उसके विरुद्ध आएगा वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा और उसके सामने कोई ठहर न सकेगा, और वो शोभायुक्त देश में खड़ा होगा जो उसके हाथ से नष्ट किया जाएगा। दानियेल 100।
मैं इस पद का उपयोग उन पदों के विचार के लिए एक आधार बिंदु के रूप में करना चाहता हूं जो इस पद से पहले आते हैं, इसलिए मैं पहले इस समझ को स्थापित करूंगा। हमारा उद्देश्य ये दिखाना है कि सिकंदर महान के राज्य के विघटन के पश्चात जो इतिहास पद 3 और 4 में अनुसरण करता है, वो 1999 नेव में आरंभ होता है और फिर वर्तमान यूक्रेनी युद्ध, पश्चिम की शक्तियों पर पुतिन की विजय तथा पुतिन की उसके पश्चात पराजय की पहचान करता है, जो पद 16 तक ले जाती है।
यद्यपि मिस्र उत्तर के राजा अंतियोकुस के सामने ठहर न सका, तो भी अंतियोकुस रोमियों के सामने ठहर न सका, जो अब उसके विरुद्ध आ गए थे। अब कोई भी राज्य इस उदयमान शक्ति का अधिक समय तक प्रतिरोध करने में समर्थ न रहा। ईसा पूर्व 5 में जब पोम्पेई ने अंतियोकुस एशियाटिकुस को उसकी संपत्तियों से वंचित कर दिया और सीरिया को एक रोमी प्रांत बना दिया, तब सीरिया जीत लिया गया और रोमी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसी शक्ति को पवित्र देश में भी खड़ा होना था और उसे भस्म करना था। रोम ईसा पूर्व 17 में परमेश्वर की प्रजा यहूदियों के साथ संधि द्वारा संबद्ध हुआ, जिस तिथि से वो भविष्यद्वाणी की कालगणना में एक प्रमुख स्थान रखता है। तथापि उसने यहूदिया पर अधिकार वास्तविक विजय के द्वारा ईसा पूर्व 17 तक प्राप्त नहीं किया, और तब वो निम्नलिखित रीति से हुआ। पॉन्टस के राजा मित्रडेट्स के विरुद्ध अपने अभियान से लौटने पर पोम्पी के सामने यहूदिया के सिंहासन के लिए दो दावेदार हिरकेनस और एरिस्टोब्यूलस संघर्ष कर रहे थे। उनका मामला पोम्पी के समक्ष आया, जिसने शीघ्र ही एरिस्टोब्यूलस के दावों की अन्यायपूर्णता समझ ली, पर उसने अपने लंबे समय से वांछित अरब के अभियान के बाद ही इस विषय में निर्णय स्थगित करना चाहा, ये वादा करते हुए कि वो तब लौटकर उनके मामले को जैसा न्याय संगत और उचित प्रतीत होगा वैसा निपटाएगा। पोम्पी की वास्तविक भावना भांपकर एरिस्टोब्यूलस शीघ्र ही यहूदिया लौट गया, अपने लोगों को हथियारबंद किया और दृढ़ रक्षा की तैयारी की, ये निश्चय करके कि किसी भी कीमत पर वो ताज बनाए रखेगा जिसके किसी और के पक्ष में निर्णय हो जाने की उसे आशंका थी। पोम्पी ने उस भगोड़े का निकट से पीछा किया। जब वो यरूशलेम के पास पहुंचा तो एरिस्टोब्यूलस अपनी चाल पर पछताने लगा, उससे मिलने बाहर आया और पूर्ण अधीनता तथा बड़ी धनराशि का वचन देकर मामला सुलझाने का प्रयास किया। पोम्पी ने यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए धन प्राप्त करने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी के नेतृत्व में गैबिनियस को भेजा, परंतु जब वो उपसेनानायक यरूशलेम पहुंचा तो उसने पाया कि फाटक उसके लिए बंद थे और दीवारों के ऊपर से उसे ये बता दिया गया कि नगर उस समझौते पर कायम नहीं रहेगा। इस प्रकार की छल कपट को दंडमुक्त नहीं रहने देने हेतु पोम्पी ने एरिस्टोबुलस, जिसे वो अपने साथ रोके हुए था, को बेड़ियों में जकड़ दिया और तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ यरूशलेम पर कूच कर दिया। एरिस्टोबुलस के समर्थक उस स्थान की रक्षा के पक्ष में थे, हाइरकानुस के समर्थक फाटकों को खोल देने के। दूसरे पक्ष की संख्या अधिक होने और वही हावी रहने से पोम्पी को नगर में निर्बाध प्रवेश दे दिया गया। तब एरिस्टोबुलस के अनुयायी मंदिर पर्वत पर जा डटे। उस स्थान की रक्षा का उनका संकल्प उतना ही दृढ़ था जितना उसे अधीन करने का पोम्पी का। 3 महीनों के अंत में दीवार में इतनी बड़ी सेंध कर दी गई कि धावा बोला जा सके और उस स्थान पर तलवार के बल पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद हुए भयानक संहार में 12,000 व्यक्ति मारे गए। इतिहासकार लिखता है कि ये अत्यंत मर्मस्पर्शी दृश्य था। उस समय ईश सेवा में लीन पुरोहित शांत हाथों और अडिग संकल्प के साथ अपना अभ्यस्त कार्य करते रहे, मानो चारों ओर की उन्मत्त हलचल से अनजान हों, जबकि उनके चारों तरफ उनके अपने लोग मारे जा रहे थे और अक्सर उनके अपने रक्त का भी मिश्रण उनके बलिदानों के रक्त से हो जाता था। युद्ध का अंत कर पोम्पी ने यरूशलेम की प्राचीरें ढा दी, यहूदिया के अधिकार क्षेत्र से कई नगरों को निकालकर उन्हें सीरिया के अधिकार क्षेत्र में दे दिया और यहूदियों पर कर लगा दिया। इस प्रकार पहली बार यरूशलेम को विजय द्वारा इस शक्ति के हाथों में सौंप दिया गया जो महिमामय देश को तब तक अपनी लोहे की पकड़ में जकड़े रखने वाली थी जब तक कि वो उसे पूरी तरह नष्ट न कर दे। उरिया स्मिथ, दानियल और प्रकाशित वाक्य 259-260।
हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
परमेश्वर के लोगों के बीच विवाद या हलचल का न होना इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि वे स्वस्थ सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। ये आशंका करने का कारण है कि वे सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट भेद नहीं कर रहे हो सकते। जब शास्त्रों की जांच पड़ताल से नए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, जब ऐसा कोई मतभेद नहीं उठता जो लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास सत्य है स्वयं बाइबल की खोज करने के लिए प्रवृत्त करे, तब जैसे प्राचीन काल में था वैसे ही अब भी बहुत से लोग होंगे जो परंपरा से चिपके रहेंगे और जिसे वे नहीं जानते उसी की उपासना करेंगे। मुझे दिखाया गया है कि बहुत से लोग जो वर्तमान सत्य के ज्ञान का दावा करते हैं वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या मानते हैं। वे अपने विश्वास के प्रमाणों को नहीं समझते। वे वर्तमान समय के कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं करते। जब परीक्षा का समय आएगा तो जो लोग आज दूसरों को उपदेश दे रहे हैं वे जब अपने अपनाए हुए मतों की जांच करेंगे तो पाएंगे कि अनेक बातों के लिए उनके पास कोई संतोषजनक कारण नहीं है। इस प्रकार परखे जाने तक उन्हें अपनी गहरी अज्ञानता का पता नहीं था। और कलीसिया में भी बहुत से ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं कि वे जो मानते हैं उसे समझते हैं, परंतु जब तक विवाद उत्पन्न नहीं होता वे अपनी कमजोरी को नहीं जान पाते। जब उन्हें अपने समान विश्वास रखने वालों से अलग कर दिया जाएगा और उन्हें अकेले खड़े होकर अपने विश्वास की व्याख्या करने के लिए बाध्य किया जाएगा, तब उन्हें आश्चर्य होगा ये देखकर कि जिस बात को उन्होंने सत्य के रूप में स्वीकार किया था उसके विषय में उनके विचार कितने भ्रमित हैं। ये निश्चित है कि हमारे बीच जीवित परमेश्वर से हटाव और मनुष्यों की ओर मुड़ाव हुआ है और दैवीय ज्ञान के स्थान पर मानवीय ज्ञान रखा गया है। परमेश्वर अपने लोगों को जागृत करेगा। यदि अन्य उपाय निष्फल हो जाएं, तो उनके बीच विधर्म प्रवेश करेंगे जो उन्हें छानेंगे और भूसी को गेहूं से अलग कर देंगे। प्रभु उन सबको जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं निद्रा से जाग उठने के लिए बुलाता है। बहुमूल्य ज्योति आई है जो इसी समय के लिए उपयुक्त है। ये बाइबल का सत्य है जो उन संकटों को प्रकट करता है जो ठीक हमारे ऊपर आ पड़े हैं। ये ज्योति हमें पवित्र शास्त्रों के परिश्रमी अध्ययन और उन सिद्धांतगत स्थितियों की अत्यंत गंभीर जांच की ओर ले जानी चाहिए जिन्हें हम धारण करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सत्य के सभी पक्षों और स्थितियों की प्रार्थना और उपवास के साथ पूरी तरह और निरंतर खोज की जाए। विश्वासियों को अनुमान और सत्य की प्रकृति के संबंध में अस्पष्ट धारणाओं पर स्थिर नहीं रहना चाहिए। उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए ताकि जब परीक्षा का समय आए और वे अपनी आस्था का उत्तर देने के लिए सभाओं के सामने लाए जाएं, तब वे अपने भीतर की आशा का कारण नम्रता और भय सहित दे सके। उत्तेजित करो, उत्तेजित करो, उत्तेजित करो। जिन विषयों को हम संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं वे हमारे लिए जीवित वास्तविकता होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि जिन सिद्धांतों को हम विश्वास के मूलभूत लेख मानते हैं उनका प्रतिरक्षण करते समय हम अपने को ऐसे तर्कों का उपयोग करने की कभी अनुमति न दें जो पूर्णतः सुदृढ़ न हों। वे किसी विरोधी को चुप कराने में सहायक हो सकते हैं, परंतु वे सत्य का आदर नहीं करते। हमें सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत करने चाहिए जो न केवल हमारे विरोधियों को निःशब्द कर दें, वरन जो अत्यंत निकट और सूत्रिष्मतम जांच परख को भी सह सकें। जिन्होंने अपने को वाद विवाद करने वालों के रूप में शिक्षित किया है उनके साथ ये बड़ा खतरा है कि वे परमेश्वर के वचन के साथ निष्पक्षता से व्यवहार नहीं करेंगे। किसी विरोधी का सामना करते समय हमारा गंभीर प्रयत्न ये होना चाहिए कि विषयों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि उसके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, न कि केवल विश्वास को आश्वस्त करने का प्रयास करें। मनुष्य की बौद्धिक उन्नति चाहे जितनी भी हो, उसे एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अधिक प्रकाश के लिए पवित्र शास्त्रों का गहन और निरंतर अध्ययन आवश्यक नहीं है। एक समुदाय के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी के विद्यार्थी बनने के लिए बुलाया गया है। हमें तत्परता के साथ सतर्क रहना चाहिए ताकि हम उस किसी भी प्रकाश की किरण को पहचान सकें जिसे परमेश्वर हमारे सामने प्रस्तुत करे। हमें सत्य की पहली झलक पकड़नी है और प्रार्थनापूर्ण अध्ययन के द्वारा अधिक स्पष्ट प्रकाश पाया जा सकता है जिसे दूसरों के सामने रखा जा सकता है। जब परमेश्वर की प्रजा निश्चिंत हो जाती है और अपने वर्तमान प्रकाश से संतुष्ट हो जाती है, तब हम निश्चय कर सकते हैं कि वो उन पर अनुग्रह नहीं करेगा। उसकी इच्छा है कि वे उस बढ़ते और निरंतर बढ़ते प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहें जो उनके लिए चमक रहा है। कलीसिया का वर्तमान रवैया परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया है जिसने उन्हें ये महसूस करा दिया है कि उन्हें और अधिक सत्य और अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब शैतान हमारे दाएं बाएं, आगे और पीछे काम कर रहा है, और फिर भी एक प्रजा के रूप में हम सो रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि एक आवाज़ सुनाई दे जो उसकी प्रजा को कार्य के लिए जगा दे। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5 7-7-7-8।